আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তানজিলুল কিতাবি মিনাল্লাহিল আজিজিল হাকীম ইন্না আনজালনা ইলাইকাল কিতাবা বিল হাক্কি ফা'বুদুল্লাহ মুখলিসাল লাহুদ্দীন সাদাকাল্লাহুল আযীম। اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ زمر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آنے والی جو صورتیں ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ خاص طور سے بہت ہی سملر قسم کے ٹاپکس ہمیں اس صورت کے ان صورتوں میں نظر آتے ہیں، توحید وغیرہ سے ریلیٹڈ اور پھر دلائل وغیرہ، اور بہت ہی ایک سملر پیٹرنس ہمیں نظر آئے گا ان صورتوں میں آگے آنے والی۔ زمر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں یہ آرڈر کے اعتبار سے قرآن پاک کی 39th نمبر پہ صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 59th نمبر پہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں ٹوٹل۔ اس صورت کو سورہ زمر کہنے کی وجہ، آگے آیت نمبر 71 میں ہم دیکھیں گے الی جہنم زمرہ کا لفظ آئے گا، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ زمر کہا جاتا ہے، وہ آگے آیت نمبر 73 میں جس کا تذکرہ آئے گا، 71 میں سوری۔ اس کا اصل جو ظاہر موضوع جیسے ابھی بیان ہوا وہ محور ایک عقیدہ توحید سے متعلق اور ریلیٹڈ ان آگے آنے والی صورتوں میں زیادہ ایمفسس نظر آئے گا۔ اور بالکل شروع میں ہم نے دیکھا کہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عظیم معجزہ ہے قرآن پاک، تنزیل الکتاب، تنزیل سے جو شروع ہوا، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں بات ہوگی، لیکن یہاں بس یہی اتنا جان لینا مناسب ہے کہ اسی قرآن پاک کی جو معجزہ ہے اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے بات، اور پھر تمام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واسطے سے سویا گویا سارٹ آف، یہ اب کلام ہم تمام ان کے تمام مسلمانوں سے پوری امت سے ہو رہا ہے کہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے اسے خالص اللہ کے لیے کر دیں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے اس کو خالص کر دیں۔ پھر آگے ہم اگر ورس نمبر آیت نمبر یعنی کہ 6 پہ جائیں، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم الی آخر الآیات، وہی نظر آتا ہے دوبارہ کہ ایک وحدانیت پہ اللہ کے جو تکوینی دلائل ہیں، شرعی جو تشریحی کے ایک سارٹ آف ہوتے ہیں، لیکن ایک تکوینی دلائل، وہ بار بار دونوں قسم کے ہمیں قرآن پاک میں نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح انداز بدل بدل کر رب العالمین کی جو وحدانیت ہے اس پر یہ تکوینی دلائل، اسی طرح سے اللہ نے پھر ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اس میں یہ جعل منہا زوجہ، اس سے ایک زوج بنایا، اور وانزل لکم من الانعام، جانور بھیجے، اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اسی طرح کے دلائل دیے۔ لیکن یہ ایک خاص طور سے اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلقن فی ظلمات الثلاث، کہ تین اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک اور بہت ہی میجر سائنٹیفک ڈسکوری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو آج کے زمانے میں پرابلی لیٹسٹ ماڈل، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی جو الٹرا ساؤنڈ مشینز ہیں، ان کے تھرو سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے ان دا وومب آف ہز ہر اور ہر مدر، وہ تین سارٹ آف ڈفرینٹ فارمز آف لیئرز کے اندر جا کے ہوتا ہے۔ تو یہی اس کا ذکر یہاں خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کا ذکر کیا، جو آج کی سائنس لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا انکشاف کر سکتی ہے۔ جبکہ ایون دو بظاہر دیکھنے میں کچھ عرصے پہلے تک بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ بس ایک پردہ سا ہے، سارٹ آف بیک آف دا ووم، مگر اب لیٹسٹ بالکل جب سے ٹیکنالوجیز دنیا نے ترقی کی اور میڈیکل سائنس اتنا آگے گئی ہے، تو اس نے یہ ہمیں بتایا کہ اس یہ تین ڈفرینٹ فارمز آف لیئرز میں اندھیروں میں جا کے ہوتا ہے۔ آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک کی مثال لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی کہ वो एक ऐसे गुलाम जैसी है जिसमें कई शरीक होते हैं। जैसे एक पार्टनरशिप के ऊपर कोई बिजनेस होता है, उसमें डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी इक्वल परसेंटेजेस जो भी उनके शेयर होल्डिंग्स होती हैं उसके हिसाब से उनकी उस कंपनी में ओनरशिप होती है। इसी तरह उस ज़माने में गुलाम होते थे, तो गुलाम भी शेयर्ड हो सकते थे, कोई दो दो उसके मालिक हो सकते थे, चार हो सकते थे, वट एवर समथिंग लाइक दैट। तो उसकी एक ख़ास तौर से मिसाल हमें यहाँ पर मिलती है, और उसकी मिसाल देने का मकसद यहाँ पे मुशरिक की मिसाल बताना है कि मुशरिक जो है वो शेड गुलाम की तरह है। टू बी प्रिसाइज, ज़रबल्लाहु मसल रजुल फी शुरका मुतशाकिसून व रजुलन सलामन लिरजुल इला आखिर आयत। यानी कि मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की तरह है जो कि शेड होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। एक ने कहा भाई गो राइट, एक ने कहा गो लेफ़्ट, अब वो खुद ही कन्फ्यूज है कि किसका ऑर्डर माने किसका ऑर्डर ना माने, इतना कन्फ्यूजन में काम क्या अच्छा करेगा। और दूसरी तरफ एक ईमान वाले की मिसाल ऐसी दी कि जैसे उसका एक ही मालिक होता है। इबाद पीछे गुजरा था, या इबादी अल्लज़ीन असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफूर रहीम। एनी हाउ अल्लाह के बारे में कि वो गफूर रहीम है। तो इसी तरह इबाद जो मुसलमान एक मोमिन होता है उसकी मिसाल एक ऐसे खालिस गुलाम की दी जो इखलास से काम करता है, क्योंकि उसका मालिक एक ही होता है, वो भी अच्छा होता है, गुलाम के भी जज्बात का लिहाज रखता है, इखलाक का भी अच्छा होता है, उसके साथ अच्छाई का मामला करता है, तो वो भी इखलास के साथ अपने मालिक की फिर खिदमत करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इस पारे के एंड होने के बाद आगे नेक्स्ट पारा जब शुरू होता है, फिर हम देखते हैं ऑनवर्ड्स कि हमें कुछ डिफरेंट और टॉपिक्स ब्रीफली नज़र आते हैं। पहला तो ये कि उसी तरह से आयत नंबर 32 में अगर हम देखें तो आगे 34 तक ऑनवर्ड्स इंसानों के जो दो फरीक हैं कि एक काफिर है ज़ाहिर है और दूसरे फरीक जो हैं वो अंबिया की इत्तबा करने वाले हैं, तो इनका जिक्र कुछ मिलता है। और फिर आगे वर्स नंबर 53 पे हम जाते हैं तो ऑनवर्ड्स 55 आयत तक हमें जो अल्लाह का रहमत और दरवाज़ा जो है उसके बारे में ख़ास तौर से एक ये सब कह लें कि नसीहत भी कह सकते हैं इसे, लेकिन एक अल्लाह की रहमत का जो दरवाज़ा है उसे समझना प्रॉब्ली असल में जो कुरान की आयात हैं इनका तर्जुमा या तफसीर या तशरीह करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। वो तो उसी लैंग्वेज में और उसी टोन में जाके ही जो समझ आ सकता है वो बयान करना हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मगर इस आयत में ख़ास तौर से जब कहा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफूर रहीम। तो पहले जैसे मिसाल आई थी एक काफिर मुशरिक की मिसाल जो कि जॉइंट होता है ओनरशिप पे, और एक मोमिन की मिसाल जो कि इखलास के साथ एक ही मालिक होता है जिसका। अब यहाँ पे उसी तरह आयत नंबर 53 में देखें तो या इबादी वही मेरे बंदे अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ये नहीं कहा मेरे नेक बंदे मेरे मोमिन बंदे मेरे ईमानदार बंदे या मेरे इबादत गुजार बंदे या मेरे दीनदार बंदे, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं आया। यहाँ पे है असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिसने अपने नफ्स पर इसराफ़ किया यानी कि जुल्म किया ज़्यादती की, जिसने गुनाह किया उस गुनाहगार बंदे की बात हो रही है, और मुसलमान भी नहीं कहा। या इबादी हर बंदा इसके अंदर शामिल है जो भी इखलास के साथ ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, जितना बड़ा तुम्हारा जुर्म है जितना बड़ा तुमने जुल्म किया है अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होना। इसीलिए मिश्कात शरीफ में एक रिवायत भी आती है हदीस कुदसी है, अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं लऊ बलगत अज़्ज़ुनूब का इनान अस्समाई सुमस्तफ़र तनी गफ़र तुल्ला का ला उबाली। ये हदीस कुदसी, ये खुद इन सेल्फ अब वर्ड ज़ाहिर है एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है मुझ जैसे बंदे के लिए, लेकिन क्या फरमा रहे हैं अल्लाह सुबहाना व ताला कि अपने गुनाहों को भरो आसमान की छत से लगा दो इनान समा और उनको करते जाओ, इतने गुनाह करो इतने गुनाह करो इतने गुनाह करो कि पूरी यानी कि यूनिवर्स भर जाए। कौन कर सकता है इतने गुनाह, बड़े से बड़ा कोई मुजरिम और गुनहगार और बड़ा भी होगा कितनी ये दुनिया भर लेगा अपने गुनाहों से, कितने गुनाह कर लेगा, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं इनान समाई आसमान की छत से लगा दो अपने गुनाह सुम अस्तगफर तनी फिर मुझसे एक मरतबा कहो अल्लाह माफ़ कर दे, यानी कि तौबा। सिर्फ एक और हदीस में आते हैं अत तौब अन्नदमतु तौबा, तौबा नदमतुन, यानी कि तौबा जो होती है दिल की सिर्फ एक नदामत होती है, इतना अल्लाह से एक माफ़ी का खाली अल्लाह से डर के उसकी खशियत दिल में आ जाना और उससे माफ़ी मांग लेना इस तौबा। तो अल्लाह कह रहे हैं ला तकनतु, मेरी रहमत से मायूस ना हो, और अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर गालिब है। ये भी एक दूसरे खुद अल्लाह ने अर्श पर लिखा, ये हदीस में आता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी कहा इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ। जैसे कोई बड़े से बड़ा फोल्डर होता है जो आज के ज़माने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मल्टी गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स का कोई बहुत बड़ा फोल्डर हो किसी हार्ड ड्राइव के ऊपर, उसके ऊपर एक बटन दबाया जाए डिलीट का, तौबा के नाम से उस पर एक डिलीट का बटन दबाया जाए और वो सब का सब इरेज हो जाता है विद इन अ सेकेंड, पता भी नहीं चलता। तो यही अल्लाह की रहमत की मिसाल अल्लाह ने ख़ास तौर से आयत नंबर 53 से देखें तो ये बताना चाह कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करो, जितना बड़ा गुनाह हो गया कोई मसले की बात नहीं है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसकी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। एनी हाउ, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने का तो अभी ज़ाहिर है टाइम नहीं है, हम आगे खुलासे पर अपने कॉन्सनट्रेट करते हैं और आगे देखते हैं कि फिर आयत नंबर 60 के अंदर ऑनवर्ड 73 तक तकरीबन अच्छी खासी इन आयतों में पहले तो क़यामत का एक मंज़र अल्लाह ने बयान फरमाया कि इस तरह क़यामत के जो डिफरेंट मनाजिर होंगे, फिर अल्लाह झूठ बोलने वालों पर वाले जो होंगे उनके चेहरों को स्याह कर देगा, दे विल बी यू नो साइन मार्क्ड कि दीज आर द लायर्स। तो और फिर फाइनली बिल्कुल कि अहले तकवा को जन्नत में दाखिल होने की दावत दी जाएगी और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हुए उन्हें सलाम कहेंगे। तो आयत नंबर बिल्कुल 73 पे जाके अगर हम गौर करें, वसीक़ल्लज़ीन तक़ू रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़द्खुलूहा ख़ालिदीन। सुबहान अल्लाह व तआला के यही ये ज़ुमरा जो लफ्ज़ आया था शुरू में, जिस वजह से इसे सूरह ज़ुमरा कहा गया कि इन सब जो लोग होंगे तगू रब्बाम जो अल्लाह से डरने वाले होंगे उनसे उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे जन्नत के और उनसे कहा जाएगा सलामुन अलैकुम। तो इसी पे आके बिल्कुल एंड में ये सूरत ख़त्म फिर होती है, व तरल मलाइका हाफीना मिन हौलिल अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व कुज़िया बैनहुम बिलहक वकीला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसी अल्लाह की तारीफ़ के ऊपर ये सूरत जाके ख़त्म होती है। और नेक्स्ट एक बहुत ही गौर करें तो इम्पॉर्टेंट कुछ सूरतों का आगाज़ होता है, ये 7 के करीब हामीम के नाम से सूरतें आती हैं, 7 की 7 सूरतों का बिल्कुल ऑर्डर के एतबार से भी ये इकट्ठी जाएंगी और इंशाल्लाह नज़ूल के एतबार से भी हम देखते हैं, और सारी सूरतें हामीम से स्टार्ट होंगी, तो इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमें नज़र आएंगी, बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ इन सब सूरतों इन 7 हामीम इन्हें कहने की वजह, इसीलिए इन्हें हवामीम भी कहा जाता है। ये एक सॉर्ट ऑफ एक कह सकते हैं गुलदस्ता अलग से एक जगह कुरान में रखा हुआ है और सब का बिगिनिंग हामीम, ज़ाहिर है सूरह मुकत्तआत से होगी, तो हम देखेंगे कि तंजीलुल किताब जैसे इस सूरह गाफिर के अंदर हम स्टार्ट करें तो इसी तरह शुरू होता है, लेट्स बिगिन विद इट। तो तरबियत यानी कि ऑर्डर के एतबार से दिस इज़ द 40th सूरत इन द कुरान, और इस नज़ूल के एतबार से दिस इज़ द 60th सूरत इन द कुरान। इसे सूरह मोमिन भी कहते हैं, और गाफिर कहने की वजह ये थी जो आयत नंबर 3 में हम देखेंगे आएगा, गाफिर ज़म भी आता है, गाफिर कहते हैं जो बख्शने वाले को यानी मगफिरत करने वाले को। तो यहाँ पे भी गाफिर ज़म का मतलब ये होगा गुनाहों को मगफिरत करने वाला, ये गाफिर का लफ्ज़ आने की नस्बत से इसे गाफिर कहा जाता है। और फिर आगे क्योंकि ख़ास तौर से आयत नंबर 28 से ऑनवर्ड्स 45 तक एक मोमिन बंदे का ज़िक्र आएगा, जिस उसी नस्बत से इसे कभी सूरह मोमिन भी कहा जाता है। मेन जो सब्जेक्ट इस सूरत का है वही हक और बातिल और जो हिदायत और गुमराही है और ईमान और कुफर है, उसके दरमियान एक बिल्कुल डिस्टिंक्शन एक पैदा करना। तो इन सब सूरतों के अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हमें नज़र आएंगी, यहाँ पे ख़ास तौर से इनके दरमियान एक सिमिलैरिटी डिस्टिंक्शन पैदा करना इन सब चीज़ों के दरमियान। और बिल्कुल स्टार्ट इसीलिए वही सबसे पहले तो कि नबी अलैहिस्सलाम का जो एक दायमी फॉरएवर मॉडल मौजा है तंजीलुल किताब, उसी किताब से नॉर्मल जो पैटर्न कुरान पाक का हमने देखा हरूफ मुकत्तआत के बाद अमूमन कुरान पाक से ज़िक्र और उसकी मौजज़ा और एजाज होने की बातें, तो वही यहाँ पे भी मिलता है हमें। और ظاہر ہے ایبسولوٹلی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کئی سو یعنی سینچریز گزر چکی ہیں، کتنی اس کے باوجود یہ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے. سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے دیکھ لیں، الفاظ کی ادائیگی ہر فارم میں اس کے معجزہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. تو اسی کی بات یہاں پہ چلتی ہے، اور صرف اس میں ایک شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ حق والا سننے والا جو ہے وہ حق کے اخلاص سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے ایک بالکل نان پریجڈس اور ان بایسڈ ہارٹ اور مائنڈ رکھتا ہو. اور سٹارٹ بالکل ورس نمبر 3 میں ہم دیکھیں پھر، تو غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ و الیہ المصیر، جو وہی جو اللہ نے کی ہے اس کا ذکر ہونے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ نے چار صفات بیان کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے غافر الذنب یعنی کہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول، قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. عقاب ہوتا ہے جو کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے عذاب جو عمومی طور پر جیسے پورے کسی گاؤں پہ کوئی سیلاب آ گیا، کوئی فلڈ آ گیا، کوئی ارتھ کویک آ گیا، کچھ بھی کوئی نیچرل ڈسٹرکشن ہو گئی، ڈیزاسٹر آ گیا، تو وہ عذاب ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ بلا وجہ بھی جو گناہ گار نہ ہی بھی ہوتے اس میں مارے جاتے ہیں. لیکن عقاب از اونلی فار دا گناہ ڈن، آگ کے بدلے آگ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، یہ عقاب کا مطلب ہوتا ہے. اور فائنلی فورتھ صفت جو اللہ نے اس کی اپنی ہی بتائی یہاں پہ، بندوں پر خاص فضل اور احسان فرمانے والا ہے، تولی لا الہ الا الیہ المصیر. تو آگے اور پھر ہم چلتے ہیں، تو پھر آیت نمبر 7 کے اوپر تم دیکھتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 سے 8 تک کہ ایمان والوں کے لیے فرشتوں کی ایک دعائیں یہاں پہ نظر آتی ہیں. وہ فرشتے جو عرش کو اللہ کے اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں حملۃ العرش بھی کہا جاتا ہے عربی میں، ان فرشتوں کو جنہیں یہ عرش اٹھانے کا شرف حاصل ہے، وہ ہر وقت یہ کہ اللہ کی حمد اور تسبیح وغیرہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، انہیں دائمی باغات یعنی کہ جنت کے جو ہیں گرینری اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا نعمتیں ان میں داخل فرما دے، اور ان کے آبا یعنی کہ ان کے انسیسٹرز اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں کو جو نیک ہیں انہیں بھی داخل ان کے ساتھ فرما دے، انہیں عذابوں سے بچا لینا ہے. تو میں خاص طور پہ ان کی دعا آتی ہے. اور پھر ایک جو خاص اسلوب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک، کہ قرآن میں نارملی جو پایا جاتا ہے کہ ہر دفعہ ترغیب کے بعد ایک ترہیب بھی ہوتی ہے، کہ یعنی جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ آ جائے گا، یا اپوزٹ سائڈ آف دا ایکویژن جو ہے ان کی بات بھی چلے گی، تاکہ دونوں کو درمیان ایک بیلنس رہے. پہلے کیونکہ مقرب جو فرشتے تھے جو اتنے مقرب ہیں کہ آسمان کو عرش کو اللہ کے اٹھائے ہوئے ہیں ان کی ذکر چلا، تو اس کے بعد آگے کفار اور فجار کا حال بتایا ان آیتوں میں، اور پھر یہ کہ ان کی جو درخواست ہوگی وہ رد کر دی جائے گی کیسے، جب یہ فائنلی اینڈ میں اپنا انجام دیکھیں گے دنیا میں، کیونکہ بہت ہی متکبر اور پرائڈ اور اس کے اندر مبتلا ہیں، تو آگ کے شعلے جب یہ اس دن دیکھیں گے تو یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں بچاؤ. لیکن جو جہنم کے جو واچ مین ہوں گے، باڈی گارڈز ہوں گے، یا چوکی دار ہوں گے، یا جنہیں اس لینگویج میں داروغہ کہا جاتا ہے، تو وہ انہیں رد کر دیں گے، وہ ان سے کہیں گے کہ تو اس وقت جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی تم رد کرتے تھے، اب آج تمہارے لیے کوئی چانس نہیں ہے، تو جاؤ جہنم میں. اور آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظلم اور جو سرکشی کا جو ایک مشہور کردار یہاں پہ ہمیں ایک نظر آتا ہے، آیت نمبر 28 سے لے کر آن ورڈز 46 تک غور کریں، فرعون کا واقعہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا. آگے بھی ہم دیکھیں گے یہ فرعون کا واقعہ ظاہر ہے اسی لیے آتا تھا عموماً کہ یہ سرکش تھا، اور عرب کے سردار بھی ابو جہل اور ابو لہب کسی فرعون سے کم نہیں تھے، وہ اسی طرح کے ظالم تھے. تو ان کے بارے میں ان آیتوں میں خاص طور سے ذکر ہمیں ملے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ने किस तरह उस फिरौन को दावत दी, किस तरह उसने रद्द किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये किस्सा तो बार बार मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर से इसके ही ज़िम्न के अंदर एक मोमिन बंदे का ख़ास तौर पे अल्लाह ने तस्करा किया इन आयतों में, बीच में 28 से लेकर ऑनवर्ड्स 46 तक ये जाते ही है बात, कि ये जो बंदा था वक़ाल रजुल मुमिन मिन आल फिरऊन इला आखिर आयत, ये बंदे का जो जिक्र आयत नंबर 28 में शुरू हो रहा है, ये एक मोमिन बंदा था, ये खामोशी से चुपचाप इस मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान ले आया था और उनका दीन कबूल कर लिया था इसने। तो बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के मशवरे शुरू किए फिरौन ने, और ये इस जो ईमान साहिब ईमान जो मुसलमान उस वक्त का शख्स था, ये उनके दिफा के लिए डिफेंस के लिए खड़ा हो गया। ये उन लोगों को समझाने लगा कि भाई ये वाजे जब दलाइल और रोशनी रोशन एक जो मुअज्जाद मूसा अलैहिस्सलाम के मिरेकल्स देख चुके हो तो इन पे ईमान ले। लेकिन जाहिर है फिरौन तो अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने डिफरेंट तदबीरें की और फाइनली मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से जाना पड़ा बनू इसराइल के साथ रातों रात। तो उन्होंने उसने यही फैसला किया फिरौन ने कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन एनी हाउ जो ये जिसको हम रजुल मोमिन के नाम से यहाँ कुरान ने जिक्र किया वकाल रजुल मोमिन, तो इसकी तकरीर इस कदर मौसर थी कि फिरौन को ये ख़तरा हो गया कि शायद उसके अपने दरबारी भी कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बातों से मुतासिर हो जाएं। तो उसने ज़ाहिर एंड में अपना कतई एक फ़ैसला सुना दिया कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को दोनों को अब कत्ल कर देने का ऑर्डर पास कर दिया। और इस जो बंदा मोमिन रजुल मोमिन ने जो बात की थी इसके जवाब में इसका मजाक उड़ाने के लिए फिरौन ने फिर इन आयतों में से पता चलता है कि सिर्फ जस्ट टू शो हिम डाउन अपना एक जो उसका बहुत ही उस ज़माने में नाम जो रिवायात में आते हैं हामान के नाम से इसका एक वज़ीर होता था, वन ऑफ़ हिज एडवाइज़र्स, उसको इसने हुक्म दिया कि मेरे लिए एक बहुत ही टॉल बिल्डिंग एक टावर सा बनाओ और मैं भी ऊपर जाके देखूंगा, मैं देखूं तो सही कि मूसा का खुदा है का अलैहिस्सलाम, एक घमंड में अपने कि मैं ऊपर इस टावर के जाके टॉप टावर, सुना है कि उस ज़माने में एक बहुत बड़ा टावर बना और बनाया गया वल्लाहु आलम, बट एनी हाउ जो रिवायात में कुछ ये बात मिलती है। और इस सब के बावजूद वो जो रजुल मोमिन था मुसलमान था उस ज़माने का अल्लाह का वलीउल्लाह था, वो अपने बयान पर जारी रहा, उसने फिरौन पर की बात मानी और ना ही अपने ईमान से हटा। और नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उस बंदे को अजाब से बचा लिया जबकि फिरौन जाहिर है अजाब की लपेट में आ गया एंड में। ये अजाब कब्र में भी उसके पीछे नहीं छोड़ेगा और सुबह और शाम उन पर सब के ऊपर पेश होगा। ये तमाम टोटल जो बनू जो फिरौन के जो उस के हवारी कह लें कौल वो जो हवार फिरौन ने अपने हवारियों से कहा भी था आयतों में आते हैं, तो इसके जितने हवारीन हैं इन सब के समेत एक चीज़ जो काबिले इल्मी एक नुक्ता सॉर्ट ऑफ इस आयत नंबर जहाँ पे ये किस्सा एंड होता है इसके करीब आयत नंबर 46 में हम गौर करें, अन्नार युअरज़ून अलैहा गुदुवन व अशियन व यौमा तकूमुस सा, तो कि बिल्कुल क्लियरली कैटेगोरिकली अल्लाह ने कहा ये जहाँ पे भी इनकी कब्रें हैं, ये जिस जगह भी दफन है मदफून है ये लोग, ये अजाब लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे और फिर क़यामत आएगी और वहाँ पर दोबारा अजाब लेना शुरू करेंगे अपना फ़िरौन समेत इसके तमाम हवारी। तो इससे ये भी पता चलता है जो कब्र के अंदर अजाब है वो बिल्कुल बरहक है और इस आयत से क्लियर बिल्कुल इस बात की भी तस्दीक होती है। और फिर चंद नेमतों का इस सूरत में हमें आगे चल के जिक्र मिलता है नंबर 61 से 65 तक, जो अल्लाह ने सुकून के लिए रात बनाई और ये के देखने दिन बनाया माश के लिए और ज़मीन को एक करार अता फरमाया और आसमान को एक छत बनाया और इसी तरह से बिल्कुल ब्यूटी दुनिया में ब्यूटीफुल सीनरीज़ वगैरह अल्लाह ने कायम की और ये के रिस्क के तौर पर पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल हमारे लिए कर दी। इन आयतों में आयत नंबर 61 से 65 तक इनका कुछ तस्करा मिलता है। और फाइनली आगे इससे हम चलते हैं तो इंसानी तख्लीक के जो मराहिल हैं फिर से उन पे बात शुरू होती है वल्लज़ी ख़लक़कुम आयत नंबर 67 से आगे चल जाके अगर ख़ास तौर से गौर करें तो वल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितबलुगू अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनू शुयूखन व मिनकुम मन युतवफ़ा मिन क़ब्लु व लितबलुगू अजल मुसम्मा व लअल्लकुम तअक़िलून, के कैसे अल्लाह ने नुतफ़ा बनाया, फिर खून बनाया, फिर गोश्त यानी कि एक लंप, फिर हड्डी, एक ढांचा उसमें आ गया, जान आ गई, और पूरा बच्चा किस तरह से पूरी एक तख्लीक बच्चे की होती है। और फिर पैदाइश के बाद वो पहले बहुत ही कमज़ोर और वीक होता है, खड़ा भी नहीं हो सकता, फिर सब कुछ चलना फिरना सब सीखता है, बड़ा हो जाता है, एंड फाइनली लितब लोगो अशुद्धकुम वो बुढ़ापे को पहुंच जाता है। एंड फिर देन अगेन हम देखते हैं उसकी दोबारा आई साइड वीक होना शुरू हो जाती है, उसकी अकल, उसकी जो मेमोरी है वो मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, उसके अज़ा यानी कि बॉडी पार्ट्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, और स्लोली बट स्टेडी वो उसी इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे पैदा हुआ था उसकी तरफ जाता है, एंड देन फाइनली उसे मौत आ जाती है। तो इस तख्लीक के अल्लाह ने एक वल्लज़ी युहयी व युमीत व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, अगेन के इस तमाम के तमाम का करने वाला कौन है, अल्लाह है, और वो जिस चीज़ का इरादा करता है वो होके रहती है। कौन है जो इन सारे मराइल की निगरानी करता है, तो इसीलिए ये अल्लाह ही है, इसीलिए कहा जब वो इरादा करता है जिस चीज़ का तो वो होके रहती है। और फिर आगे सूरत के एंड में बिल्कुल अगर आयत नंबर 77 से हम देखें 85 तक, तो जो हलाकशुदा कौमें हैं उसकी दोबारा तस्करा के उनके जो आसार देखने की तलकीन इसलिए है कि उनको भी अपने जो उनके मटेरियल पावर्स थी और उनका जलाल था, माल पैसा, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप थी, हमने पढ़ लिया ये तो कितने पीछे गुजरा, कोई एक तरफ सामरी का वाकया, फिरौन है, आद समूद की कौमें थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितने भी गुजरे वाकयात, तो इन सब का वाकयात में हमने देखा। उसी तरह अज़ाब का मुशाहिदा कर लेने के बाद इनका ईमान कबूल नहीं किया जाता, ये इसमें मेन क्रक्स है इस बात को पूरी समझने में, कि उन सब ने भी, फिरौन ने भी कहा था आमन तो रब्बी हारून व मूसा, लेकिन उस वक्त उसका ईमान किसी काम नहीं आया। फिर इसके बाद आगे दूसरी हामीम सूरत स्टार्ट होती है, इसे जिसे सूरह फुसिलत भी कहा जाता है और हामीम सजदा भी कहा जाता है। जैसे बात हुई ऑर्डर के एतबार से सातों हामीम हवामीम जिन्हें कहा जाता है, ये सूरतें एक के बाद एक आएंगी, और ये सूरत आयत नंबर ऑर्डर के एतबार से सूरत नंबर 41 है, और नज़ूल के एतबार से ये कुरान पाक की सूरत नंबर 61 है, नज़ूल नाजिल होने के एतबार से। उसी तरह हामीम से स्टार्ट होती है तंजील मिनर रहमान रहीम, जैसे कि बात हुई कि इन तमाम हामीम सूरतों में वही हामीम से स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी और किताब के ज़िक्र और अल्लाह की बड़ाई और इन चीज़ों पे एम्फोसिस रहता है। तो इसमें भी इसी तरह आयत नंबर 3 पे हम देखेंगे किताब फुसिलत आयाती, तो इसीलिए फुसिलत का लफ्ज़ आया, इसी की नस्बत से सूरह फुसिलत कहा जाता है। और इसमें भी उसी तरह सारे जो पीछे सूरत में आए उस तरह के हमें टॉपिक्स मिलेंगे। और एक बात जो गौर करने की है, इसे क्योंकि हामीम सजदा कहा जाता है ख़ास तौर से, इसमें आगे सजदा तिलावत आएगा आयत नंबर 38 के ऊपर, तो इस वजह से इसे ख़ास तौर से हामीम सजदा भी कहा जाता है, इस बाकी हामीम सूरतों में सजदा नहीं है। उसी तरह हामीम से स्टार्ट होता है और ये टोटल उन 7 सूरतों में से सेकेंड नंबर पर सूरत आती है। और इनकी जैसे बात हुई ऑर्डर के एतबार से भी ये उसी तरह से कुरान पाक में मौजूद हैं जिस तरह ऑर्डर के एतबार से नाजिल हुई थी सारी सूरतें। और इन सूरतों के बारे में एक की पॉइंट हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अनु का जो कॉल है, उन्होंने इन्हें इन 7 हवामीम सूरतों को कुरान का हुसन करार दिया, यानी कि ब्यूटी ऑफ द कुरान, जैसे शुरू में जिक्र हुआ एक गुलदस्ता अलग से जैसे कुरान में महफूज है। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अनु को कॉल है कि हर चीज़ का एक मगज़ होता है, यानी कि ब्रेन जैसे होता है हर बीइंग का, उसी तरह कुरान का भी एक मगज़ है जो आले हामीम है, यानी कि हवामीम की जो 7 सूरतें हैं, मोमिन गुजरी पीछे, अभी हामीम सजदा पे हम हैं, फिर आगे शूरा, ज़ुख़रुफ़, दुखान, जासिया, और फाइनली अहकाफ पे जाके ये हामीम का जो गुलदस्ता है दिस विल गेट डन, वी विल गेट डन विद इट एंड इट विल एंड। और उसी पैटर्न के ऊपर कोई भाम और कोई इख्वानी कुछ भी वाजे बिल्कुल बयान के बावजूद बहुत सारे लोग क्योंकि एराज़ कर रहे हैं, तो उनके बारे में उनकी बदबख्ती के ऊपर इन आयतों में बात चलती है, लेकिन एक नोटवर्दी बात जो आयत नंबर 2 से हमें 6 तक मिलती है कि मुशरिकीन की जो ये बातें थी सारी, उसके जवाब में अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप अपनी शख्सियत का तारुफ और अपनी बियासत का मकसद इन्हें बताएं। तो यहाँ पे इस हवाले से तंजील मिन रहमान रहीम किताबन फुस्सिलत आयाती कुरआनन अरबियन लिकौमिन यालमून, इनको एक अपना तारुफ सॉर्ट ऑफ अल्लाह ने देने के लिए अपने नबी के को फरमाया और इसकी किताब की और अल्लाह की हकानियत बयान की। और आगे हम देखते हैं आयत नंबर फिर 15 पे जाके हमें कौम आद का जिक्र एक दफ़ा दोबारा ब्रीफली मिलता है, किस तरह उन्होंने अल्लाह की सरकशी की और किस तरह अल्लाह का उन पर अजाब आया। इवन दो वो इतने जिस्मानी कुव्वत वाले थे, वो उनका ख़ास तौर से आयत नंबर 15 में हम देखें, हुआ अशद्दु मिन्नुम कुव्वतन व कानू बिआयातिना यजहदून। ये कहते थे ये फामा आदुन फस्तकबरू फिल अर्ज बिगैर अल हक व क़ालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, कौन है हमसे बड़ा का ताकत में, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। ये इनका जुमला कुरान ने कोट किया और उसी तकबर और घमंड की इन्हें फिर सज़ा मिली, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हुए। इनकी जो हिमाकत और जो स्टूपिडिटी थी उससे एक ताज्जुब का एक सॉर्ट ऑफ इजहार करते हुए उन्हें एक जवाब दिया गया कि क्या तुम इस ज़ात की कुव्वत और ताकत से गाफिल हो जिसने तुम्हें पैदा किया है, क्या तुम इस हकीकत को भूल गए हो कि तुम्हारी ज़िंदगी ताकत अल्लाह सुबहानहू व तआला की अज़मत से बड़ी नहीं है। वो सब पर हावी होगा इंशाल्लाह। तो यही बात यहाँ पे इनको भी एक बिल्कुल वार्निंग साइन के तौर पे बताई गई। और फिर उनका ये क्या हशर हुआ कि फ़ारसलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी अय्यामिन इला आखिरिल आयात, के तेज़ और ठंडी एक हवा का अज़ाब इन्हें दिया गया और जो मुसलसल 7 दिन तक हवा चली और कुछ ये सब तितर बितर होकर रह गए इधर उधर। और फिर अगली आयत में हम देखते हैं आयत नंबर 17 के अंदर, वम्मा समूद उन फ़ादीना फस्तहब्बुल अमा इला आखिरिल आयात, के कौम समूद का जिक्र, उसी तरह उन्होंने भी कुफर को तरजीह दी हिदायत पर और नाफरमानी की और रसूल को झुटलाया, तो उनके ऊपर भी अल्लाह का अजाब हुआ और वो अपनी अयाशियों में मस्त थे। एक ज़ोर से चीख आई, जैसे एक कोई ऐसी ज़ोर से आवाज़ आई, उनके दिल अपनी जगह पे बैठ गए और वो जिस हाल में थे, जैसे इनके बारे में आता है कौम समूद की जो जहाँ पे कुछ बाकियात मौजूद हैं उस जगह पे आज भी इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट और जो पेलेंटोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि ऐसे आसार उनके घरों के और बाकायदा बर्तनों के मौजूद हैं कि वो एज इट इज़ कोई रातों रात बस चुपचाप वहाँ से गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला कहाँ गया। फिर आगे जाहिर है इनकी अल्लाह के जो दुश्मन हैं इस तरह के लोग, इन्हें अल्लाह के हजूर क़यामत के दिन जब जमा किया जाएगा वहाँ इनके आज़ा तक बोलेंगे, इनका एक एक बॉडी पार्ट बोलेगा। उसके बारे में ख़ास तौर से आयत नंबर 19 में हम देखें, अन्नारु फ़हुम व यौम यहशरुहुम आदा अल्लाहि इला नारि फ़हुम युज़ऊन हत्ता इज़ा जा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समअहुम व अब्सारुहुम व जुलूदहुम बिमा कानू यामलून। ये इन आयतों के अंदर उनकी आँखें, उनकी इवन स्किन गवाही देगी जो कुछ उन्होंने किया। और इससे आगे और हम अगर देखते हैं तो जो असहाबे जो इस्तकामत हैं, यानी कि जो नेक मोमिन लोग हैं, उनकी बात हमें बिल्कुल एंड में मिलती है। वो लोग हैं जो इखलास और हिकमत के साथ और नेकी बिल्कुल सही विद अ प्योर हार्ट अल्लाह की तरफ दावत देते हैं और उसकी राह में मुश्किलात अगर कोई आती भी हैं, कोई सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है, तो उसे अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल एंड में इस सूरत के लास्ट आयत नंबर लास्ट से पहले 46 आयत ख़ास तौर से एक नोट वर्दी, जो मन अमिला सालिहन फली नफसी व मन असा फ़अलैहा वमा रब्बुका बिज़ुल्लामिन लिलआबीद, के जो नेक कर अमल करेगा वो अपने लिए करेगा, जो बुरा अमल करेगा वो भी अपने लिए करेगा, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करने वाला। ये जो कुछ भी आखिर में देखेगा, लियुज़ी कहूँ ज़हर अलफसाद फिलबर्र वलबहरी बिमा कसबत अदिननास लियुज़ी कहूँ बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, वो उसके अपने हाथों की कमाई होगी जो कुछ भी वो अंजाम देखेगा। फिर क़यामत का एक मंज़र जो कि किस तरह से अचानक यकदम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आयत नंबर 47 में हम देखते हैं। और फिर अल्लाह सुबहानहू व तआला इन मुशरिकों से सवाल करेगा, कहाँ है मेरे शरीक, बुलाओ उनको, जिनको तुम पूजा करते थे मेरे साथ शरीक ठहराते थे, आज के दिन बचा लें अगर वो तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन जाहिर है कोई बचाने वाला इन मुशरिकों को उस वक्त नहीं होगा। और बिल्कुल इसके एंड में अल्लाह का एक वादा, आयत नंबर जो 53 के अंदर हम देखते हैं, सनुरीम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ी व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शयइन शहीद। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत कि वेरी 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 नियरली, मोस्ट श्योरली करीब आने वाले दिनों में हम इन्हें दिखा देंगे अपनी निशानियाँ, फ़िल आफ़ाक़ पूरे के पूरे यूनिवर्स में जहाँ ये घूमेंगे, फ़फ़ी अनफुसिम यहाँ तक कि अपने दिल के अंदर अल्लाह की निशानियाँ ढूंढ लेंगे, जिसके ऊपर सूरह नूर में, आयत नूर में ख़ास तौर से काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है। लेकिन वो अपने नफ्स के अंदर ये निशानियाँ ढूंढ लेंगे जो बहुत करीब, और अल्लाह इनके ऊपर वाज़े कर देगा, हत्ता ये तबय्यना लहुम अन्नहुल हक़, के वही हक़ है। और ज़ाहिर है आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीज़ों को तो अगर हम गौर करें तो उसके हक होने में किसी किस्म का कोई शुबा ही नहीं रहता। ये तो हमारी अपनी स्टूपिडिटी है जिसके बुनियाद पे हम इसे भुलाए बैठे हैं। आगे नेक्स्ट हामीम नंबर 3 सूरत जो आती है वो सूरह शूरा है। इसकी भी इब्तदा हामीम आइन सीन काफ वही हरूफ मुकतात से, उस वही पैटर्न, ऑर्डर के एतबार से नेक्स्ट 42nd नंबर पे सूरत, और नज़ूल के एतबार से उसके बाद लास्ट 62 नंबर पे नाजिल हुई सूरत। और इस सूरत में 53 आयात हैं और 5 रुकू हैं। इसमें ख़ास तौर से आयत नंबर 38 में हम देखेंगे वामरुम शूरा बैनहुम का जिक्र आएगा कि अपने मामलात जो होते हैं वो आपस में मशवरे से तय करते हैं। शूरा कहते हैं एक कमेटी को, या एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, या समथिंग लाइक दैट, कोई भी कमेटी हो जो आपस में मशवरे से अपने फिर मामलात की तय करती हो, उसका जिक्र आएगा। ये शूरा में बरकत होती है और इसीलिए इस शूरा के ऊपर ख़ास एम्फसिस में कुरान पाक में बाकायदा एक सूरत नाजिल हुई और उसी सूरत के अंदर आयत वामरुहुम शूरा बैनहुम आया कि ये अपने मामलात, मुसलमानों की जो मिसाल दी, ये सच्चे मोमिन होते हैं, ये घबराते नहीं हैं, इनके दिलों में खोट नहीं होता, ये आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और फिर मामलात को तय करते हैं, बजाय इसके कि अपनी एक वन एंड ओनली हुक्मरानी कायम करने के लिए किसी के भी हक और उसको गबन करने की कोशिश करें। एनी हाउ, दूसरी मक्की सूरतों की तरह इसमें भी एक नज़रियाती मसला, वही मसले से बहस होती है, वही वगैरह और रिसालत और उसी पे और ज़्यादा एम्फसिस आता है, जैसे पीछे हामीम सूरतों के बारे में बात हो चुकी है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे कुरान का एजाज़ और उसकी मिसाल लाने से मुखालफीन क्योंकि आजिज़ थे, तो उन्हें चैलेंज के अगर ला सकते हो तो एक सूरत ही ले आओ। लेकिन ऑफ कोर्स वो तो एक छोटी से छोटी सूरत भी नहीं ला सकते और सिर्फ इन हरूफ मुकतात का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने कोई सूरत क्या लानी है। तो बहरहाल अगर वो ला सकते होते तो ये सारा झगड़ा पड़ता ही ना, और वो तो वैसे ही कुरान को नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक डिसरिगार्ड करने का उनके पास एक वेपन होता, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सके, लिहाजा दे आर अ टोटल फेलियर इन इटसेल्फ। और फिर आगे आयत नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं ख़ास तौर से, तो हमें कज़ालिक यूहा इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, के वही का जो सरचश्मा है, जो बुनियाद है, जो जहाँ से ये नाजिल होती है, वो सिर्फ एक अल्लाह ही है और उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। इसी तरह तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले लोगों की तरफ वही करता है और वही गालिब है और वही हकीम है। तो यानी कि उसका जो पायनियर, जो उसका भेजने वाला है, वो सिर्फ अल्लाह ही है, इसके ऊपर बात। और फिर दरमियान में एक अल्लाह की जो अज़मत और जलाल है वो बात करने के बाद दोबारा फिर वही और कुरानी का जिक्र आयत नंबर 7 में हमें मिलता है, कज़ालिका औहैना इलैका कुरआनन अरबियन लितुनज़िरा उम्मुल क़ुरा वमन हौला वतुनज़िरा यौमल जमअ वला रैब फीह फरीकुम मिनल जन्नति व फरीकुम मिनस सईर, के उसी तरह से वही करने वाला कि अल्लाह ही है और उसी ने वही की। और इस आयत में ख़ास तौर से ये मक्के, ये कि मक्का के जो रहने वाले हैं और जो उसके सराउंडिंग में, उसके सबर्ब में रहने वाले हैं, उनके बारे में ये फरीकों का दो जो ज़िक्र आता है यहाँ पे, कि कुरान अरबी में भेजा ताकि तुम जो इस मक्का वाले हो इसकी तरफ रेफरेंस देते हुए कि इसके और इसके सराउंडिंग में सबर्ब में जो इसे आसानी से समझ लो। اور پھر آگے ظاہر ہے آیت نمبر 15 میں بھی ہم غور کریں تو وہی کہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین کی جو دعوت ہے وہ ایک ہی تھی، تمام کے تمام، چاہے وہ نوح ہوں، ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، علیہم الصلاۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، سب کی دعوت ایک ہی تھی، صرف انہیں ایکسیپٹ اور رد کرنے والوں کا ڈفرینس تھا، چاہے وہ جس شریعت پہ بھی چلتا ہو زمانے میں، اور جس نبی کا اور رسول کا آنا ہو چکا ہو اس کی شریعت پر چلنا ظاہر لازم ہے، لیکن وہ سب کی دعوت سب کی ایک ہی تھی، وہ سب ایک ہی اللہ کی طرف بلاتے تھے، سب اللہ کے چوزن ونز تھے۔ اور اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں سورت کے کہ ایمان والوں کی نمایاں صفات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی کچھ جو یہاں پرومیننٹ ہمیں ملتی ہیں ان باتوں سے جو سمجھ آتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ان ایمان والوں کی سب سے پہلے تو نشانیاں یہ کہ وہ اپنے اللہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے جو گناہ ہوتے ہیں اور جو بے حیائی کے کام ہیں ان سے دور رہتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اپنے اللہ کی فرما بردار ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم اپنے باہمی معاملات امروں بینہ شورا کے شورا کے ایک بناتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں، انہیں ڈسکس کرتے ہیں، اور طریقے سے جو اللہ کا بنایا ہوا نظام اور سسٹم ہے ہمیں دیا گیا، جس طرح سسٹم پہ کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی بھی جگہ چلنی چاہیے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، کچھ بھی ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بڑے سے بڑی فیکٹری ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہو، کوئی مل ہو، یا کوئی بڑے سے بڑا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہاؤس ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر ایک کمیٹی ہو جو اس کو چلائے اور سسٹم سے اس سسٹمیٹک وے میں کام کرے، تو سب کامیاب انشاءاللہ چلے گا۔ اور یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں مومن، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ فائنلی اس سورت کی جو آخری دو آیتیں ہیں اس میں دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے وحی اور رسالت کا ذکر آتا ہے جس طرح سے سورت کے شروع میں آیا تھا، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض لا الہ الا اللہ تصیر الامور، انہی طرح کے پیٹرن کے اوپر رسالت اور وحی کے ذکر کے اوپر یہ قرآن ختم ہو جاتا ہے، یہ آیت، یہ سورت کا بالکل اینڈ ہوتا ہے۔ اس سے آگے سورہ زخرف پھر سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ تربیتی اعتبار سے، یعنی کہ آرڈر نمبر 43 اس سورت کا بنتا ہے قرآن پاک میں، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 63 نمبر پہ نازل ہوئی لاسٹ سورت کے بعد، یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 89 آیات ہیں اور 7 رکوز ہیں۔ اسے زخرف کہنے کی وجہ آگے آیت نمبر 35 میں آئے گی۔ زخرف کہتے ہیں جو سونے اور جو زینت وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بیوٹی کے لیے، تو اسی نسبت سے آگے آیت نمبر 35 میں اس کا تذکر آئے گا، اسی نسبت سے اسے سورہ زخرف بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل سٹارٹ میں ہی حروف مقطعات والکتاب المبین، کے واضح کتاب ہے، اسی کا ذکر جو پیٹرن قرآن میں ہم نوٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انا آگے آیت نمبر 33 میں دیکھیں، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، دوبارہ لاسٹ صورت میں بھی جیسے بات ہوئی تھی کہ ان تمام حامی جتنی حوامیم صورتیں ہیں آل حامیم ہیں، ان سب کے اندر بہت ساری سملیرٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور لاسٹ بھی بات اسی طرح سے ہوئی تھی، کتاب المبین یہ واضح کتاب ہے اور عربی میں نازل ہوا، تو اسی طرح یہاں پہ بھی اسی قرآن کا ایک معجزہ ہونے کی بات چلی، اور یہی کہ یہ عربی قرآن بنایا تاکہ تم ایزیلی سمجھ لو۔ پیچھے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ مکہ اور اس کے سراؤنڈنگ والوں کے بارے میں کہ تم لوگ سمجھ لو، اور یہاں پہ بھی یہی کہ ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی کتاب ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 پہ ہم اگر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ایک جو دلائل، قدرت کے جو دلائل ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحث کی ہے تھوڑی سی، کہ آسمان کی بلو چھت ہے یا زمین کا ایک فرش اللہ نے بنایا، پہاڑ، بڑے بڑے ماؤنٹینز، اس میں آبشاریں، ریورز، سمندروں کی بات ہے، اور پھر کیسے ڈراپ بائی ڈراپ جو بارش ہوتی ہے رحمت والی اللہ کی برسنے والی، آیت نمبر 9 سے 13 تک تقریباً، 9 سے لے کر 13 آیت تک تقریباً اسی طرح کا، اور پھر آگے یہ بھی کہ کس طرح اس بڑے بڑے اوشنز میں جو کشتیاں اور جہاز، شپس وغیرہ سیل کرتے ہیں، اور ہر قسم کے جو جانور ہیں وہ جنہیں ہم کھاتے ہیں، بیف ہے، مٹن ہے، چکن ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور پھر کیسے جو ایک جگہ سے دوسری جانے کے جو نقل و حمل کے جو بہترین ذرائع آج کے زمانے میں بالکل اس طرح سے تو ثابت ہو چکے ہیں، تو ان پہ تو کوئی بھی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سب کی سب چیزوں اگر ہم غور کریں تو یہ ایک لیونگ دلیل ہے نیٹ سیلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ کوئی پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کوئی شہر میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو، کوئی دا بگ ایپل میں رہتا ہو، یا کوئی ٹوبا ٹیک سنگھ میں رہتا ہو، یا کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی مر چکا ہے، اس کے لیے بھی یہی چیزیں گواہی تھیں، اور جو آنے والے لوگ ہوں گے، ہم نہیں رہیں گے، ان کے لیے بھی یہ چیزیں ایک زندہ جیتی جاگتی مثال اسی طرح سے قائم و دائم رہیں گی. تو ان کی نشانیاں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے ذکر کرتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے آگے آیت نمبر 15 میں اگر ہم غور کریں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، کہ انسان بہت ہی کفور یعنی کہ جھٹلانے والا ہے، واضح جاہل آدمی ہے. یہ یہاں پہ اگر ہم غور کریں جو زمانے جاہلیت کی ایک سوچ تھی، ایک ان کی آئیڈیالوجی تھی، اس کا رد یہاں پہ ایکچولی مقصود ہے. کیونکہ ایک طرف ظاہر ہے وہ اپنی بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے ہم اتخذ مما یخلق بناتن واسفاکم بالبنین، کہ ویزا بشرا آدم بماسور، یہ کہ وہی یہ جو مشرکین تھے اپنی تو بیٹیوں سے اتنی نفرتیں کرتے تھے کہ کسی اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ چھپاتے پھرتے تھے، انہیں زندہ بیری کرنے کے لیے ترتیبیں بناتے شروع کر دیتے تھے، اور اللہ کے لیے کہتے تھے فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک بالکل ان کا اسٹوپڈ سا اشکال تھا اور کوشچن تھا جس کا ایکچولی کوئی سینس نہیں ہے. اور آگے آیت نمبر 26 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشرکین تھے یہ بھی کہتے تھے، ساتھ میں ان کا ایک جو دوسرا آئیڈیالوجی تھی وہ یہ کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابراہیم علیہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، یعنی کہ کمال کی بات یہ ہے چاہے وہ مشرک ہوں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، سب کا کلیم ایک ہی تھا کہ سب کے سب اسی ایک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا انہیں کے فالوورز ہیں ایٹ لیسٹ. تو ان کا بھی یہی کلیم تھا. تو ان کو اللہ نے ایک رد کرنے کے لیے آیات نازل فرمائی کہ یو پیگن ورشپرز کین ناٹ بی فالوورز آف دا ملت آف ابراہیم، دیر از نو وے، تم لوگ تو بتوں کے پجاری ہو، تمہارا اس سے کوئی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر فائنلی آیت نمبر 31 میں اگر ہم دیکھیں تو قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اس میں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جو دعوت دی اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے اور انہیں سحر ساحر کہنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ ان کی اسٹوپڈ سوچ تھی اس کے بارے میں یہاں اللہ نے مینشن کیا کہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا، اس پر کیسے آ گیا؟ تو یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے، اسی لیے اس میں ہیل ہو جاتے، کبھی ساحر کبھی مجنو کوئی بھی جو یہ نکالتے رہتے تھے. تو ان کا یہ بھی ایک اشکال یہ کیا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کو یہی ایک یتیم، ایک فقیر غریب آدمی ملا تھا، کوئی طائف یا مکہ کا، یہ جو دو قریتین کا ذکر ہے، رجل من القریتین، ان دو بس قریا کہتے ہیں بستی کو، یعنی کسی گاؤں، کسی شہر کا نام، کسی جگہ کا، پلیس کا. تو ان دو بستیوں میں سے یعنی کہ مکہ اور طائف کی طرف ریفرنس دیتے ہوئے کہ اس کے کسی سردار کو کیوں نہیں اللہ نے چوز کر لیا، تو انہیں کیوں چوز کیا؟ تو اللہ نے اس سے نیکسٹ آیت نمبر 32 میں بالکل واضح طور پر کیٹیگوریکلی انہیں بتایا کہ اختیار جو ہوگا اس کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جب انہیں ان مشرکین کو اپنے کھانے پینے کے اپنے رزق کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ اللہ کو. اور یہ اللہ کا اختیار کل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جسے چاہے اختیار دے، جسے چاہے بلند کرے، جسے چاہے گرائے. اور آگے موسیٰ علیہ السلام کا پھر بریفلی دوبارہ قصہ آیا، کیونکہ ان کو رد کرنے کے لیے یہ لوگ کیونکہ اسی طرح کے گھمنڈ اور اس کے اندر مبتلا تھے جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ اس زمانے کے انہیں اب فرعون کہا جاتا ہے، تو ان کا رد کرنے کے لیے پھر فرعون اور موسیٰ کا قصہ آیت نمبر 46 سے لے کر 51 تک ہم دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی تھی لیکن فرعون کو اپنا جو اقتدار تھا، اس کی جو پاور تھی، اس کی سپریمیسی تھی، اس کے سونے چاندی، اس کی ویلتھ تھی، اس پہ بہت بڑا ناز تھا، تکبر تھا، پراؤڈ آف اٹ. اور جو وہ تمام کے تمام ایجپٹ کی جو ایون नहरें यानी कि कैनाल्स होती थी उनका भी मालिक समझता था अपने आप को, और मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही हकारत की यानी कि डिग्रेडिंग वे में देखता था। उसका जिक्र जानबूझ के करने की वजह भी जाहिर है यही है क्योंकि कफार भी ये करते, तो उनको एक उसका अंजाम याद दिलाने के लिए कि वो भी एंड में गरक हुआ था, उन्हीं जिस जिन पानियों पर वो घमंड करता था उसी के अंदर डूब के वो गरक हुआ, और इसका मकसद बयान करने का कुफार को शायद अकल आ जाए। लास्ट आयत के अंदर फिर इस सूरत की आयत नंबर 89 पे जाएँ, फ़सफ़हानुम वक़ुल सलामुन फ़सौफ़ यालमून, के अल्लाह अपने जो जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं उनको इन जाहिलों से एराज़ करने और सब्र करने का हुक्म दे रहे हैं। वक़ुल सलामुन, इनको कहो अस्सलामु अलैकुम, इनसे मुंह फेर लो, इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो सूरह हामीम स्टार्ट होती है अद्दुखान के नाम से हम देखते हैं यहाँ पे, वो ये कि इस ये ऑर्डर के एतबार से कुरान पाक की 44th नंबर पे और नज़ूल नाजिल होने के एतबार से 64th नंबर पे नाजिल हुई, ज़ाहिर है। उसके बाद नेक्स्ट आमीम सूरत है और इसके अंदर ये भी मक्की सूरत ही है ऑफ कोर्स, और इसमें टोटल 59 आयात और 3 के करीब रुकूज हमें मिल रहे हैं। इसकी आगे हम आयत नंबर 10th के अंदर देखेंगे, फ़र्तकब यौम तअति समा बिदुखान मुबीन, इस दुखान का लफ्ज़ आएगा इसीलिए इसे सूरह दुखान कहा जाता है इसकी निस्बत से, क्योंकि दुखान कहा जाता है वैसे धुएँ को, तो इसका जिक्र यहाँ पे आएगा लफ्ज़ दुखान के साथ तो आयत नंबर 10 में जाके, इसी वजह से इसे सूरह दुखान कहा जाता है। आयत नंबर 1 में हामीम वल किताबिल मुमीन, उसी तरह जिस तरह हरूफ मुकतात और किताब का तस्करा वाज़े किताब होने का, लेकिन थर्ड आयत के अंदर इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, ख़ास तौर से लैलतुल कदर का जिक्र आया कि हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया। अभी रमज़ान की ख़ास तौर से रातों के अंदर अगर हम देखते हैं तो अहादीस से पता चलता है ये रमज़ान की ताक रातों के अंदर से मोस्ट प्रॉबली है, 21st, 23rd, 25th, 27th एंड 29th, इन रातों में से कोई एक रात लैलतुल कदर है। उसी के बारे में यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कैटेगोरिकली कि हमने इसे लैलतुल कदर में नाजिल किया, फ़ी लैलत मुबारकतिन, उस मुबारक रात में इस कुरान को हमने नाजिल किया, उसका जिक्र आता है। और आगे हम चलें तो आयत नंबर 6 के अंदर फिर अल्लाह का जिक्र दोबारा, रहमतम में रब का इन्ना वसमी और अलीम, जो कि अल्लाह एक रहमत है खुद इन सेल्फ, और अल्लाह की रहमत के तौर पे इस कुरान को नाजिल किया गया, और उसी रहमत का अल्लाह की जो है वो तकाजा ये है कि वो अपने बंदों को इस हिदायत से महरूम ना रखे। उसने ये हिदायत का पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया, अब ये लोगों के ऊपर है कि वो इस पे अमल करें या ना करें, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो मुशरिकीन हैं और जो कुफार हैं ये फिर भी हर बात बात पे कोई ना कोई हील उज्जत निकालते ही हैं। बल हुम फी शक्किन यलअबून, आयत नंबर 9 में देखें तो ये शक में पड़े हुए हैं, फिर भी जाहिर है कैटेगोरिक निशानियों के बावजूद, हर किस्म के दलाइल के बावजूद ये फिर भी शक कर रहे हैं, तो ये तो करते रहेंगे, इनका जिक्र आता है। और आगे हम फिर चलें तो नबी अलैहिस्सलाम के जो ज़माने का फ़िरौन है, जैसे अबू जहल है या अबू लहाब वगैरह है, आयत नंबर 25 से देखें, कम तरकु मिन जन्नात उयून व ज़ुरूअ व मकाम इन करीम, तो जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो फ़िरौन है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का भी जाहिर है क्योंकि एक फ़िरौन था, उसके अंजाम से डराया गया, और ख़ास तौर से ये इस तरह के सो फिरौन के भी बहुत बड़े बड़े बागात थे, सैकड़ों उसके पैलेसेस थे, उसकी ज़मीनें थीं बड़ी चौड़ी, और हज़ारों की तादाद में उसके स्लेव्स, उसके खादिम लौंडियाँ, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ उसकी जो फौज थी बड़ी, ये सब कुछ होने के बावजूद एंड में वो अपने आप को मिस्र का हाकिम और हर जानदार बेजान चीज़ का अपने आप को मालिक समझ बैठा था, तो उसका अंजाम याद दिलाने की बात चलती है। लेकिन एंड में हमने देखा कि वो आमनतु बिल्लाही करता रहा, और वो उन्हीं समुंदर की जो मौजें थीं उनमें गरक हो गया, उसी का इन आयात के अंदर ज़िक्र आता है। जो उसने वत रुकुल बाहरा रावन इन्नाहुम जुंदुम मुगरकून, ये सब के सब जो है वो डूब के गरक हो गए, उन्हीं समुद्रों में मर गए जिनका ये अपने आप को मालिक कहते थे। तो इससे एक बात ये भी पता चलती है, कल का जो हाकिम है वो आगे का आज महकूम हो सकता है। बड़े बड़ी सल्तनतों के ये हशर हमने देखे, हिस्ट्री इस पर गाइड है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाने से कुछ एक्सप्लेन करने से भी क्या हासिल, जब एविडेंस सब सब का सब मौजूद है। बड़े से बड़ा रोमुलस हो, जूलियस सीजर हो, सोलोमन की एम्पायर भी कही, और फिर साइरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, या हारून हो, हारूत हो, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा कोई रूलर गुजरा हो इस दुनिया में, सब के सब का मिल बातचात ख़त्म हुई एंड में। तो उसी का तस्करा यहाँ पे मिलता है कि इस फिरौन को जिस तरह से गरक हुआ, हमें भी इससे इबरत लेनी चाहिए। तो आगे फिर हम देखते हैं आयत नंबर 43 के अंदर कि इन्ना शजरत ज़कूम, ख़ास तौर से एक ज़कूम का लफ्ज़ आता है। तो ज़कूम एक ताम असीम कलमोहली अगली फील बतून का गली हमीम, ये इनकी जो ये कह लें कि इस दरख्त की है कि इसका खाना ऐसे होगा, इसका पीना ऐसे होगा, पेट के लिए ऐसे होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसके बारे में जो हौलनाक एक सॉर्ट ऑफ अजाबों का अल्लाह ने जिक्र यहाँ पे किया है कि किस तरह से दर्दनाक अजाब होगा इनको खाने के लिए, जो दरख्त मिलेगा उसकी क्या सिचुएशन होगी है ये सब। और फिर इस अजाब का जिक्र करने के बाद नेमतों का ज़ाहिर एंड में, जैसे हमने बात की है, कुरान का एक पैटर्न है कि बुराई के साथ साथ एंड में अच्छी बात का या अच्छाई के साथ बुराई जिक्र करने का मकसद ये होता है कि लोग दोनों तरह के जो चीज़ें हैं उसके अंदर उसका उनको जान सकें। यदून अफ़िया बिकुल्लिफ़ाक़त आमिनीन ला यज़ूक़ून अफ़िया अल-मौत इल्ला अल-मौतत अल-अव्ला व वक़ाउ अज़ाबुल जहीम, इनको कभी मौत नहीं आएगी, इनका जिक्र ईमान वालों का, जन्नतियों का। आगे हम देखते हैं कि सूरह जासिया जो 6 नंबर के ऊपर इसी हामीम की 45 नंबर पे कुरान पाक में ऑर्डर के एतबार से और नाजिल होने के एतबार से कुरान पाक की ये बनती है 65 नंबर पे सूरत, मक्की सूरत है, इसमें 37 आयात और 4 रुकूज़ हैं। इसमें आगे आयत नंबर 28 के अंदर वतरा कुल्लु उम्मतिन जासिया, जासिया का लफ्ज़ आएगा, इसी नस्बत से इसे सूरह जासिया कहा जाता है। जासिया का मतलब होता है घुटनों पर बैठना, इसमें क़यामत के दिन का मंजर दिखाया जाएगा कि किस तरह लोग घुटनों पे बैठे होंगे, जैसे किसी बड़े से बड़े जाबिर और उसके आगे घुटनों पे कोई बैठ के माफ़ी मांग रहा हो, बिल्कुल उसी बाकी सूरतों की तरह हरूफ मुकत्तआत और फिर तंजील अल किताब, अल्लाह की किताब का जिक्र। आयत नंबर 3 में अगर हम गौर करें, इन्ना फिस समावाती वल अर्ज़ी लायातिल लिल मुमिनीन, के ये सूरत उन निशानियों का जिक्र करती है जिनमें अल्लाह की अजमत और जलाल और कुदरत और जो वहदानियत है वो सब के सब उनकी ज़िंदा गवाह हैं, उन सब निशानियों का जिक्र अभी पीछे गुजर चुका है। और मुजरिमों जो बुरे लोग हैं उनके जो फेसेस हैं उसके ऊपर थोड़ी सी आयत नंबर 7 में हम देखते हैं बात चलती है कि वैलुल्लिकुल्लि अफ़ाक़ नसीम यस्मा आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मा फबशिरहु बिअज़ाबिन अलीम, उनके चेहरे मुजरिमों का जो मकरू जो चेहरे होंगे जब उनके सामने आएंगे तो वो आयात इलाहिया सुनने के बावजूद, क्योंकि आज उनका घमंड और उसमें करते हैं इनकार, तो आखिर में वो अपना अंजाम ज़रूर देख लेंगे। फिर आयत नंबर 16 और 17 में ख़ास तौर से बनू इसराइल का जिक्र आता है दोबारा, उनके ऊपर क्योंकि अल्लाह ने ख़ास तौर से बहुत सारी नेमतें उन्हें अता की थी, तो उसी के बाद इनाम बैनात मिन अल-अम्र फ़मख्तलफ़ु इल्ला मिन बादी मा जाअहुमुल इल्म बगयन बैनहुम इन्ना रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, उन्हें अल्लाह ने किताब भी दी थी, हिकमत भी दी थी, नबूवत, कितने सैकड़ों अम्बिया ज़्यादातर बल्कि देखते हैं जो हैं वो बनू इसराइल के लोगों में ही थे, उन्हें हलाल पाक रोज़ी भी दी थी, उन्हें पूरी दुनिया पर इन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तुम्हें पूरी दुनिया पर मैंने फ़ज़ीलत दी थी, उसका ये सब यहाँ पे जिक्र हमें मिलता है। चाहिए तो ये था कि ये नेमतों से ज़ाहिर है खुश होते और अल्लाह की शुक्र गुज़ारी करते, लेकिन उन्होंने सरकशी यानी कि अल्लाह की नाफरमानी और मासियत और वो रास्ता पैथ चुन लिया, इसी वजह से वो भी अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो गए। फिर आगे हम देखते हैं आयत नंबर 24 और 25 में कि ये जिक्र करने से जो माजी के वाक़ात हमने पीछे भी सूरत में देखा और डिस्कस बार बार हो रहा है, हामीम की सूरतों में एक सिमिलर सा पैटर्न मिल रहा है। यहाँ बनू इसराइल का जिक्र इसीलिए कि आज के ज़माने के जो कुफार हैं ये उस वक्त के उनकी हरकतों से इबरत पकड़ें और अपनी इन साजिशों से बाज आ जाएँ। और ये कि जो कुफार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हों या मौजूदा ज़माने में आजकल भी हों, अगर हम देखें तो उनके सब के सब के इनकार की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो दुनिया ही की ज़िंदगी को सब कुछ समझ लेते हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसके अंदर इतना डूब जाते हैं कि उन्हें इससे बाहर कुछ जब तक इंट्रिंसिक वैल्यू नज़र नहीं आती वो चीज़ के पीछे पड़ते नहीं हैं। तो बहरहाल ये उनकी गुमराही के असबाब हैं। और फिर ये कुरान के क्योंकि मुख्तलिफ़ अंदाज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहीं पर ऑर्डर हुक्म दिया जा रहा है, कहीं पर एक नसीहत के फॉर्म में, कहीं बस सिर्फ खबर दी जा रही है, कहीं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, लेकिन डिफरेंट अंदाज में कुरान की वही नसीहत की बात बार बार नजर आती है। इस सूरत के एंड में एक कयामत की मंजर कशी अल्लाह सुबहाना व ताला फरमा रहे हैं कि आयत नंबर 28 में हम जाके अगर गौर करें, व तरा कुल्लु उम्मतिन जासिया, कुल्लु जैसे जासिया का लफ्ज़ आता है, ये सब के सब बैठे होंगे, और तदु इला किताब अलयौमि तुज़ऊनमा कुंतुम तामलून हाज़ा किताबुना यन्तिकु अलैकुम बिलहक, और इनको पता चल जाएगा ये अकैफ अमल्लज़ीन। इनकी ख़ास तौर से अल्लाह ने क़्यामत की मंजर कशी की, क़्यामत तो आ चुकी है, हशर का मैदान है और लोग जैसे खौफ के मारे घुटनों के बल बैठे हुए हैं। जासिया का इसीलिए लफ्ज़ है, इसीलिए इसका नाम भी सूरह जासिया था कि तुम क़्यामत को बुला दिया था तुमने, आज तुम्हें बुला दिया जाएगा, और तुम आयात इलाही का मजाक उड़ाया करते थे, आज तुम खुद मजाक बनकर रह गए हो। इनकी ख़ास तौर से एक डिग्रेडिंग फॉर्म में बात करने के बाद इस सूरत का एंड हमें मिलता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो लास्ट सूरह है हामीम, सेवन नंबर पे हमने कहा था आएगी, वो सूरह अहकाफ है, तरबियती यानी कि ऑर्डर के एतबार से कुरान पाक की 46 नंबर पे सूरत बनती है, और नाजिल होने के एतबार से दिस इज़ द 66 सूरह। इस सूरत के अंदर 35 आयात हैं और 4 रुकू हैं, ये भी मक्की सूरत है उसी तरह, और दूसरी हामीम की तरह उसी तरह हामीम तंजीर अल किताब वही हरूफ मुकतात और किताब का जिक्र जो कुरान का पैटर्न चला रहा है। और आयत नंबर 21 में हम देखेंगे वस्कुर अखाद इज अनजर कौमहु बिल अहकाफ, ये लफ्ज़ अहकाफ आएगा आयत नंबर 21 में, कौम आद के यानी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ रेफ़र करते हुए उसी अहकाफ की नस्बत से इसे यहाँ पे इस ये एक जगह का गालबन नाम है जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है उनकी उस जगह का जहाँ पे आए थे उस कौम के पास, तो इसीलिए इसे सूरह अहकाफ कहा गया ख़ास तौर से। इसकी भी बिल्कुल बिगनिंग में एक जो कुरान करीम की हक्कानियत और तौहीद और हशर के दलाइल जो इन उनके बारे में जिक्र चलता है, फिर मा खलकना समावाती वल अर्ज़ व बैना हुमा इल्ला बिल हक्की व अजल मुसम्मा वल्लज़ीन कफरू अम्मा उनज़िरू मुअरिज़ून, उन्हीं का ये कि जो जो मुशरिक हैं इन्होंने जो बुत वगैरह बना रखे हैं पैगनिज़म के ऊपर उतले हुए हैं और तले हुए हैं, इन्हें ये बुत ना कोई नफ़ा देंगे और ना कोई इनको नुकसान का इख्तियार है, ये बस ऐसे ही ये बेसिकली मुशरिकीन अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो आगे आयत नंबर 7 से ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं आयत नंबर 12 तक ऐजात उत्लाम आयातना बैनातिन कौल अल्लज़ीन कफ़रुल हक़ की लम्मा जाहुम हाजा सिहर मुबीन, दोबारा उसी तरह हमने पीछे अभी गुजरा हामीम सूरत में कि सहर ये उसे सहर कहते थे, जब भी इनके सामने आयात की तिलावत की जाती है तो ये या तो इसे कभी कहते हैं जादू है, कभी कहते हैं ये इन इट सेल्फ खुद ही बना लिया कुछ अम यकूल अफ्तरा, इन्हें खुद ही गढ़ लिया अपनी तरफ से, जैसे यहाँ पर भी आयत नंबर 8 में आया अपनी तरफ से खुद ही कोई कुरान पाक गढ़ के ले आए नबी अलैहिस्सलाम, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो उनके इश्कालात यानी कि उनकी जो इतराज़ात और शुभात हैं उनका तस्करा होता है, और फिर उनके जवाबात दिए गए हैं आयत नंबर आगे इन आयतों में के अंदर कुल मा कुंतु बिदाम मिन अर-रुसुल मावात अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन तबियु इल्ला मा युहा इलैया व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, इनसे कह दें मैं सिर्फ यह आयत मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे पे वही की गई है, मैं सिर्फ डराने वाला एक वाज़ डराने वाला हूँ और मेरा कोई रोल नहीं है, ये इनसे कहने को कहा जा रहा है। फिर आयत नंबर 15 से हम देखें तो हमें दो किस्म के वही दोबारा उसी पैटर्न के ऊपर लेकिन डिफरेंट स्टाइल में दो नमूने मिलते हैं, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. ان دو تین آیتوں کے اندر دو متضاد نمونوں میں، پہلا وہ جو ایک نیک بیٹا جو نور ایمان جس کے اندر تھا، مؤمن تھا، اللہ کا ولی اللہ تھا، اور اس کے ظاہر ہے وہ دین پہ تھا، تو اس نے اللہ سے تین دعائیں مانگی جب اس کے والدین نے اسے پال پوس کر بڑا کیا اور وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے ایک کمال کو پہنچ گیا، یعنی کہ بڑا ہو گیا اور سیلف سفیشنٹ ہو گیا، پھر اس نے اللہ سے تین دعائیں مانگی، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ایک نمونہ یہ، اور وہ ایسے کہ اس کی تین دعائیں اس نمونے کی شکل میں تھیں، اس نے پہلے ہی دعا مانگی کہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرنا میرے لیے آسان کر دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور میری اولاد کو نیک بنا دے، ایسی اولاد کی جس سے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور پھر دوسرا نمونہ ہمیں نافرمان اور ایک بدبخت کی صورت میں ملتا ہے، بیٹے کی صورت میں، کہ جو جس کے والدین نے اسے کہا تھا کہ ایمان قبول کرنے کی جب دعوت دی، اس نے رد کر دیا اور اس نے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے دوبارہ نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں. آیت نمبر 17 کے اندر والذی قال لوالدی اف لکما تعیدانی انا اخرج قد خلت القرون من قبلی الی آخر الآیات. وہی اس کا بیسک جو مشرکین کا اشکال اور شبہ اور اعتراض تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. پھر ان دو متضاد نمونوں کے بعد، اپوزٹ فارمز اور ایگزامپلس کے بعد، ایک مؤمن کا اور ایک نیک بیٹے کا اور ایک بدبخت یعنی کہ شقی یعنی کہ ایک نافرمان بیٹے کا تذکرہ، اور پھر اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں قوم عاد کا دوبارہ ذکر آتا ہے کہ انہیں عذاب دینے کے لیے ایک بادل بھیجا گیا، پہلے کیونکہ بہت گرمی تھی، اللہ نے پہلے بہت گرمی کی اس علاقے میں، تو یہ لوگ اس بادل کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئے کہ چلو یار بارش ہوگی اینڈ ویل گیٹ اے ریلیف، بٹ اس بادل جو کلاؤڈ کا ٹکڑا آیا تھا وہاں پہ، اس میں اتنی تیز سے ہوا چلی اور بارش ایک دم اتنی تیز ہوئی کہ یہ ہوا انہیں زور سے اوپر لے جا کر اڑا کر اس نے نیچے پھینکا، جیسے کوئی ایک اینٹس ہوں، کوئی کیڑے مکاڑے ہوں. پھر انہیں زمین پر جب زور سے پھینکا تو وہ ظاہر ہے مرے پڑے وہاں پہ، بالکل مردار پڑے ہوئے ملے. اور بالکل لاسٹ سورت کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس کا بھی اینڈ، اللہ کے جو زمین آسمان ان کو اللہ پیدا کرنے پہ بنانے پہ قادر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صبر کریں. یہاں کے ہمارا آج کا یہ حامیم کا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ہم سورہ محمد سے سٹارٹ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.